आपका है, आपका
Oh.
I go to honey bone, honey bone, honey bone, honey bone. अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे। समागत भक्तविंद की जय। समागत भक्तविंद की जय। समागत भक्तविंद की जय। श्री गुरु रंग महाप्रभु की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवत्यनष्टकी। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंध अक्रम के अनुसार पहले अध्याय का आज 14वां श्लोक है। शिष्टवाच एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम् सत्यार्थ कृष्ण चरितम् कलिकल्म सग्नम् व्याहरतु मानवत भागवत प्रधान एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम् वैयासकी स भगवान् अथ विष्णुरातम् सत्यार्थ कृष्ण चरितम् कलिकल्म सग्नम् व्याहरतु मारभत भागवत प्रधान
Thank you.
माता जी शिष्य गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सुनकर अभिनंदन हे भगवंशी पुत्र श्री सौनक जी साधुवादम शुभ प्रश्न वैयासके व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी सह वह भगवान अत्यंत शक्तिशाली अथ इस प्रकार विष्णुरातम विष्णु द्वारा रक्षित परीक्षित महाराज को सादर नमस्कार करके कृष्ण चरितम कृष्ण कथा का कलिकल्म शग्नम इस कलयुग के कष्टों को कम करने वाली व्याहर्तम वर्णन करने के लिए आरभता शुरू किया भागवत प्रधान शुद्ध भक्तों में प्रमुख श्री सुखदेव गोस्वामी वाद ने अनुवाद तात्पर्य शिष्य मध्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्री सुख गोस्वामी ने कहा कि हे विभुक्त सौनक जी परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परिषद के शुभ प्रश्नों को सुनकर राजा को सादर धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने कृष्ण कथा के विषय में वार्ता प्रारंभ की जो इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए औषधि है। तात्पर्य कृष्ण चरितम कलि कल्मशग्नम पद सूचित करता है कि विशेषकर इस कलयुग में के लिए कृष्ण के कार्यकलाप समस्त कष्टों की रामबाण औषधि है। कहा जाता है कि कलयुग के लोग अल्पायु होते हैं और उनमें कृष्ण भावना मत की संस्कृति नहीं पाई जाती। यदि कदाचित किसी की रुचि आध्यात्मिक संस्कृति में होती भी है तो उसे विभिन्न प्रकार के अप्रमाणिक स्वामी तथा योगी भ्रांत करते रहते हैं जो कृष्ण कथा का नाम भी नहीं लेते। इसलिए अधिकांश लोग अभागे तथा अनेक विपदाओं से ग्रस्त रहते हैं। श्री व्यासदेव ने इस युग के कष्ट भोग रहे लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए कली कलमसग्नम नारद मुनि के आग्रह पर इसी श्रीमद् भागवत को लिखा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत की मनोहारी कथाओं के माध्यम से लोगों को प्रबुद्ध करने में जी जान से लगा हुआ है। श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का संदेश सारे विश्व में, सारे क्षेत्रों में विशिष्टया प्रगत शिक्षित लोगों में मान्य हो रहा है। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत प्रदान कहा गया है और महाराज परीक्षित को विश्वदातम। इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, अर्थात महाराज परीक्षित कृष्ण के महान भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी पाद भी महान साधु पुरुष थे तथा कृष्ण के महान भक्त थे। इन दोनों ने मिलकर कृष्ण कथा प्रस्तुत करके कष्ट में फंसी हुई मानवता को बड़ी राहत दी है। अनर्थ उपशम साक्षात भक्ति योग दुखे लोकस्यजानंत विद्वान चक्र संविधान। भागवत में ही लिखा है कि जीव के भौतिक कष्ट जो उसे व्यर्थ लगने वाले हैं, यदि भक्ति के साथ जोड़ दें तो कम किए जा सकते हैं, किंतु लोग इस समझ नहीं पाते हैं। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की जो परम सत्य के विषय में है। श्रीमद् भागवतम 1:7 अधिकांश लोग इस तथ्य से अवगत नहीं होते हैं कि श्रीमद् भागवतम का संदेश कलयुग के कष्ट से मानव समाज को छुटकारा दिला सकता है। हम अज्ञान ज्ञानांजन सनाकय चक्षुरुन्मीलितं जैन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं जैन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदन्तिका। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरूर्नवश्नवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता शिवशाखन्वितं मुखं करोति वाचां पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्पिबा तमः मन्दे परमानन्दमाधवम् श्री गुरु नलिनतारिणम् जयतं सुरतपङ्गौ मम मन्दमतिरगति मत्सर्वस्वदाम्बोजो श्रीराधा मदनमोहन वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। एवं निस्तम्भ भृगुनंदन साधुवादम वैया सकी ही स भगवान अथ विष्णुदातम तत्यर्थ कृष्णचरितम कलिक कलम सग्नम व्याहर्तम आरभत भागवत बधान। तो शिष्य गोस्वामी पाद निमिष्यान के ऋषि मुनियों को ये कथा बता रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण चरित्र सुनने में लालायित श्री परीक्षित महाराज ने कृष्ण कथा की प्रशंसा के हुए अनेक श्लोक कहे। कई श्लोक लगभग 12 श्लोक उनके द्वारा उच्चारित है। तो जो कृष्ण कथा का अनुमोदन स्वरूप है, जैसे पिछले श्लोक में कल हम लोग सुन रहे थे कि नयेषा अति दुस्सह क्षणमाम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तम तन्मुखाम्बुज अच्युतम तन्मुखाम्बुज च्युतम हरिकथामृतम। तो सुखदेव गोस्वामी पाद को ये परीक्षित महाराज बता रहे थे कि देखिए मुझे भूख तो क्या, मैंने जल भी त्याग दिया है और ये जल त्याग भी मुझे बाधा नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके मुख कमल से निश्रित जो ये कथामृत है उन कथामृत का पान मैं कर रहा हूं और इसी से परम संतुष्टि मुझे प्राप्त हो रही है। इसी प्यास से पीड़ित मैंने ऋषि के मुने गले में मृत सर्प लपेटा था, लेकिन आज वो प्यास या भूख मुझे थोड़ी सी भी बाधा देने वाली नहीं है, क्योंकि ये कथामृत ऐसा है कि वास्तव में साक्षात संजीवनी है। ये प्रत्येक मर्त प्राणी का जीवन है या उन प्राणी को अमरता देने वाली है, इसलिए ये कथामृत का प्राण पान न करना चाहता हूं। और खास करके ये इतनी लंबी जिज्ञासा श्री कृष्ण कथा के विषयक है, क्योंकि वही कृष्ण उनके पितामह के अत्यंत परम प्रिय और उनको न केवल बपोती संपत्ति के रूप में केवल धन मिला था, बुद्धि का राज्य मिला था, अपितु भगवत भक्ति भी उसी संपदा के रूप में महाराज परीक्षित को मिली थी। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके लिए परम प्रिय थे, जिनका वर्णन आप पहले सुन चुके। तो जब इस प्रकार कथा का सराहना सुना तो इसी के चलते श्री सुत गोस्वामी पाद उन सनक जी को बता रहे हैं एवं निसन्न भृगुनंदन साधु आदम। ये महाराज परीक्षित के द्वारा इस प्रकार सुंदर साधुवाद सुना, ये सुन करके हे भृगुनंदन संबोधन देते हुए कहते हैं भृगुनंदन, क्योंकि आप एक महान ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ है, इसलिए आप उपयुक्त एकदम योग्य व्यक्ति है या सहज कृष्ण भक्ति जहां पनपती है, ऐसा धरातल आपका हृदय है। और ये महाभागवत श्री परीक्षित महाराज ने इस सोनक जी इस प्रकार कहा या ऐसा साधुवाद दिया। श्री जय गोस्वामी पाद पद सुंदर टीका इसमें लिखते कहते तादृश उत्तया परम प्रीत संसी बाधरायणी प्रवक्तुम। जय गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस प्रकार महाराज का वचन सुन करके श्री बाधरायणी मेरे व्यास महाराज के पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद परम प्रीत, क्योंकि वो भी भागवत प्रधान थे या भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ से कृष्ण प्रेमी थे। और जैसे अपने प्रेमी के विषय में कोई उनकी सराहना सुनते हैं तो सुनिश्चित ये देखा जाता है कि स्वाभाविक उन हृदय में प्रीति उत्पन्न होती है। तो उन प्रीति के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बोलना प्रारंभ करते हैं, ये कहते हैं और कहते कि जिसमें भृगु नंदन थी सौनक संबोधन प्रहर्षो प्रहर्षो उदयात अथ तत्प्रश्न अंतरम एवं स परम अनिर्वचनीय महात्मय। तो कहते भृगुनंदन इत्यादि साधुवाद दिया किसने, सुत गोस्वामी पाद ने क्यों दिया, तो बोलते ये परम अद्भुत महिमावान कृष्ण कथा प्रारंभ हो रही है। उस उत्साह में सुत गोस्वामी भर करके उनको साधुवाद दिया। किसको साधुवाद दिया उन्होंने, सोनक जी को, हे भृगुनंदन ऐसा कहा। तो अत्यंत ये महिमान्वित ये कृष्ण कथा जो वेदव्यास महाराज के पुत्र गाने जा रहे हैं, तो इसके उपलक्ष्य में उनको भागवत प्रधान कहा जा रहा है। व्याहर्तु आरभत भागवत प्रदान, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने इनको कहना चालू किया, इन कृष्ण कथा को जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है और आपको भी अत्यंत प्रिय है। ये तो मैंने सब जान लिया जब मेरे आते ही आप लोग ने ये सब यज्ञ याग इत्यादि छोड़ करके इकट्ठा हो करके हमें व्यास आसन प्रदान करके कृष्ण कथा की जिज्ञासा की। स्वाभाविक आप कृष्ण प्रेमी हैं, आपके हृदय में कृष्ण प्रति प्रेम है, तो ये तो दोनों भागवत प्रदान है। तो सब प्रधान प्रधान ही इकट्ठा हुए हैं। कहते हैं कि विष्णु रातम, विष्णु रात माने भगवान के द्वारा रक्षित, जिनकी रक्षा उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने की थी अपने परम प्रीतिपात्र, इन कुल की रक्षा के लिए श्री भगवान ने परीक्षित महाराज को रक्षित किया था, उनको बचा लिया था। यद्यपि वो उन पुत्र सुस्तामा के अस्त्र से पहले से दग्ध हो गए थे, लेकिन उनको भगवान ने बचा लिया था। इससे कहते हैं कि ऐसे विश्वनाथ के प्रति वयासकी ने ये बोलना प्रारंभ किया, प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम। जब कृष्ण चरित का इस प्रकार अनुमोदन सुना, कृष्ण चरितम प्रत्यर्च, जब अनुमोदन सुना तो उनके बाद में उन्होंने उनके बाद में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया. क्या बोले? उन कृष्ण चरितम कलि कलम सग्नम, उन कलयुग के दोषों का हरण करने वाला है, या कलयुग की जीव स्वाभाविक दुखी है, उनके दुखों को हरण करने वाली ये श्री हरि की कथा है. भगवान अपने कथाओं, अपने कथा स्त्रोता के दुख को अपनी कथा से हरण करते हैं. और ये कथारूपी मंगलमय चरित्र देते हुए क्रमशः उनके चित्त को हरण कर लेते हैं. यही कृष्ण कथा माध्यम है, जिससे वो जीव के सब कलमश का हरण इस प्रकार करते हैं. दुख का हरण करते हैं पहले, ये देखा जाता है कि जिन जिन व्यक्ति की रुचि कृष्ण कथा में होती है तो उनके चित्त को दुख छोड़ देता है. कम से कम उतनी देर तो जरूर छोड़ देता है कि जितनी देर वो कथा में बैठता है. क्यों? ये कैसे पता चलता है? बोले जबकि लगने से जब शांत हो जाता है चित्त, दुख नहीं रहता है चित्त में, तब तो सुख पूर्वक नींद आता है. इसी से सिद्ध होता है. लेकिन उतना ही नहीं, ये कृष्ण कथा ये अनेक दुखों का भी व्यक्ति के जीवन से नाश करने वाली है. अनेक दुख जो बुरी पाप राशि है, इनके श्रवण मात्र से जीव की पाप राशि नाश हो जाती है. और उन प्रारब्ध कर्म बिना भोगे निर्दहती च किंतु भक्ति बाजाम, ब्रह्मा जी प्रार्थना में कहते हैं कि जो इंद्र से लेकर के इंद्रगोप के कीड़े तक कर्म फल का भोग करते हैं, लेकिन कृष्ण कथा रूपी भक्ति जो करते हैं श्रवण और कीर्तन, तो ये कीर्तनकारी व्यक्ति या श्रवणकारी व्यक्ति दोनों वो अपने उन कर्म को भोगे बिना उनको समाप्त कर देते हैं. तो प्राकृत दुख समाप्त हुआ, या थोड़ी देर के लिए दुख समाप्त हुआ, दोबारा कर्म होगा और दोबारा फिर कर्म के कारण दुख मिलेगा. तो कहते हैं इनको निरंतर श्रवण से अब कृष्ण के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है, तो फिर तो सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है, अर्थात विमुक्त हो जाता है, विशेष रूपेण मुक्त इन दुखों से. विमुक्त का अर्थ ये होता है कि मुक्त तो हुआ दुखों से, लेकिन विशेषता क्या है? बोले कृष्ण प्रेम रूपी महासुख इसमें विशेष है. तो न केवल दुख निवारक है हरि कथा, लेकिन कृष्ण प्रेम देकर के जीव को महान संपदा वान बनाता है. इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि इन भक्ति की दरिद्रता रूप जो हमारा हृदय है, या इस संपत्ति से रिक्त हृदय है, तो उनको चाहिए कि उनके लिए भरसक प्रयत्न करे कि भगवान की भक्ति वो ज्यादातर कृष्ण कथा कृष्ण नाम का लाभ इस जीवन में ले ले, कि यही परम पुरुषार्थ बुद्धिमान लोग मानते हैं इस संसार में. क्योंकि भक्ति के दात्व्य के कारण व्यक्ति को अनेक अनेक जन्मांतर में अनेक अनेक प्रकार के कष्ट भोगने के लिए बाध्य करती है माया. तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है संसार में, इन भक्ति रूपी दारिद्र्य को हटाना चाहिए हृदय से। भक्ति समृद्ध हृदय वाले ऐसे भागवत प्रधान जो यहाँ लिखा गया है उन लोगों के बीच में बैठना चाहिए। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे भागवतों के बीच बैठते हैं, ये सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान के भक्त या जहाँ हरि कथा की नित्य चर्चा हो, कृष्ण लीलामृत उन अनेक अनेक रूप से कृष्ण लीला का चर्चा जहाँ चलता है और जहाँ अनुक्रम से नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति जहाँ भागवतम का सेवन होता है, श्रवण कीर्तन होता है, तो उस जगह में हम लोग स्थित है, ये महा महा सौभाग्य माना जाएगा। तो श्री जीव को सही बात इसमें कुछ बातें बता रहे हैं, उन पूरा वर्णन तो हम लोग सक्षम नहीं है कि उनके द्वारा वर्णित पूरा वर्णन कर सके, लेकिन कहते हैं यहां पर एक दो बातें कि ये भागवत प्रधान जो सुखदेव गोस्वामी पाद है इसके विषय में एक शब्द था भगवान अथ सह वैयासखी, वह वैयासखी उनको भगवान कहा गया है। किस माने में भगवान कहा गया है तो इसको कहते हैं जीव गोस्वामी पाद, कहते हरेर गुण आक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यज्ञान महद आख्यानम नित्यम विष्णुजन प्रिय। जो वैष्णवों को नित्य प्रति प्रिय ऐसा महद आख्यान को जो अपने पिता से सम्यक रूप से धारण किए थे, क्यों धारण किए थे तो बोलते भगवान के उन गुणों ने उनके चित्त को हरण कर लिया था। आक्षिप्त चित्त, इसलिए उनको भागवत प्रधान कहते हैं। या भगवान व्यास महाराज ने भगवान से प्रार्थना किया था कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसको मैं संहिता सिखाऊं, इसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ उन भगवत भक्त। एक तो कृष्ण चरित्र भागवत है और एक भक्त भागवत, दो भागवत दिया महाप्रभु ने, ये दो भागवत देख करके हमारा निस्तार का उपाय किया है कलयुग में। एक भागवत बद भागवत शास्त्र और एक भागवत भक्ति रस पात्र, जिनका हृदय सहज उन कृष्ण प्रेम में अप्लाइड है, कृष्ण भक्ति जिनके हृदय में है, जिनको कृष्ण कथा अत्यंत प्रिय लगती है वो भागवत है। एक तो भक्त भागवत और भगवान के प्रेम, तो दो भागवत। महाप्रभु ने इतना सुअवसर प्रदान किया है और इसमें श्रील प्रभुपाद महाराज की महती कृपा से हम लोग उसमें किसी भी प्रकार आ गए हैं, इन प्रकार हैं, तो हम लोग को ये दोनों चीज से लाभ लेना चाहिए। जो बहुत सुंदर भागवत जानने वाला व्यक्ति है उनसे बैठ करके एकांतिक रूप से उनका श्रवण करना चाहिए, उनके ऊपर विचारण करना चाहिए और उनका सत्कार इत्यादि करते हुए उनका अनुमोदन के द्वारा उनका सत्कार करना चाहिए, ये रीत है। उन भागवत देने वाले जो भक्त भागवत है उनके चरणों में स्तुति नति हमेशा करना चाहिए और उनको प्रणाम इत्यादि करना चाहिए। सनातन गोस्वामी पाद एक श्लोक में इस प्रकार लिखे, ज्ञान प्रयास मधुपात नमंती एव सन्मुख रिताम भवदीय वार्ताम दत्तम श्लोक के, श्लोक के तात्पर्य में सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं सन्मुख रिताम भवदीय वार्ताम, जो आपकी वार्ता देने वाले व्यक्ति है उनके प्रति नमस्कार प्रणाम इत्यादि सदैव जो अपने शरीर मन वाणी मन के द्वारा जो नतमस्तक होते रहते हैं तो व्यक्ति का दायभाग हो जाता है। अधिकार हो जाता है भगवंत भगवत भक्ति में। तो बहुत सुंदर सुअवसर श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा हम लोग को मिल रहा है। तो आज इस प्रकार दो भागवत में एक भागवत का चरित्र है भक्त भागवत का, तो उनके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि भागवत प्रधान ये भी महाप्रभु के एक प्रधान भागवत में उनका नाम है श्री नरोत्तमदास ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव तिथि है माघ पूर्णिमा। तो इसके निमित्त उनके चरित्र में गौर ग्रंथ दीपिका में लिखा गया है कि ये कृष्ण लीला में चंपक मंजरी रहे, उसका नाम चंपक मंजरी था, और गौरांग महाप्रभु के बाद में गौर लीला में तो उन्होंने गौर लीला नहीं देखा, लेकिन उनके बाद में उन कलिहत जीवों के सद्भाग्य को उदित करने के लिए जिन्होंने कीर्तन से प्रचार किया, कीर्तन कीर्तन के माध्यम से नाना प्रकार के नाना रूप में कीर्तन लिखा, उपदेश में और उत्कंठा बढ़ाने वाला कीर्तन, जैसे हम लोग कीर्तन का पाठ कर रहे थे, जीव की उत्कंठा बढ़ती रहती उन कृष्ण कीर्तन के द्वारा, ऐसा ऐसा कीर्तन उन्होंने रचना किया है। तो उनके विषय में बताया जाता है कि कृष्णानंद करके एक बंगाल प्रांत में एक राजा थे, उनके पुत्र अकेले पुत्र रहे, अरे भगवान के भक्त कहीं भी जन्म लेते हैं तो मुस्लिम परिवार में भी जन्म लेंगे, क्योंकि भगवत भक्ति ये कोई जन्म कुल इत्यादि के द्वारा बाधित नहीं होती है। तो इस प्रकार उनका जन्म वहां पर हुआ, बचपन से ही सहज उनका चित्त, उन माँ बाप में भी आसक्ति उनकी नहीं थी, सहज विदक था उनका चित्त, और सांवले से सलोना रूप था उनका, बहुत सुंदर रूप था, और ये राजा के अति प्रिय थे, राजा रानी के उनके पुत्र थे ही, तो अति प्रिय पुत्र थे। लेकिन खास करके उनके जीवनीकार लिख रहे कि जिनके विषय में चैतन्य महाप्रभु आगे आगाह किया था, तो कन्हैया नाटशाला में एक दिन नरोत्तम 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 ऐसा पुकारने लगे महाप्रभु, उन कीर्तन में उन्मत्त होकर के, तो सब भक्तों ने सुने नरोत्तम कौन है भाई, इस हाथों के नरोत्तम का व्यक्ति नहीं है। तो महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु पूछे कि आप ये नरोत्तम नरोत्तम पुकार रहे हैं, तो भगवान कृष्ण को नरोत्तम कहते हैं, भगवान को नरोत्तम कहते हैं, क्या ये नरोत्तम है? बोले सिपा जी थोड़ी लंबी कथा है, आप नहीं जानते, लेकिन आप जब नीलाचल जा रहे थे हमारे साथ, तो कृष्ण प्रेम में आप इतना रोते थे, तो आपको मालूम नहीं है कि इतना विवलचित होकर के आप रो रहे थे, लेकिन आपके सारे आंसू मैंने बटोर करके रखे हैं। और ये बटोर करके मैंने उनको पद्मा नदी को दिया है धरोहर के रूप में, और पद्मा नदी को मैंने कहा है कि आगे एक नरोत्तम नामक मेरा महान भक्त होगा, तो उनको ये मेरी धरोहर रूप जो कृष्ण प्रेम है, श्रीपाद का कृष्ण प्रेम, नित्यानंद प्रभु का वो प्रेम उनको दे देना। वो पद्मा ने पूछा कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये नरोत्तम है, मतलब जब कोई व्यक्ति तुम्हें स्नान करे और स्नान करते ही तुम में उफान आने लगे और तुम आनंदित हो जाओगी, समझना कि ये नरोत्तम है। और ये 12 साल का बालक 14 साल का बालक जब स्नान के लिए आए पहली बार उन पद्मा नदी में, तो स्नान करते ही पद्मा में एकदम उफान आने लगा और अत्यंत आनंदित पद्मा तो उन्होंने समझ लिया कि यही महाप्रभु ने जो कहा था भगवान ने ये नरोत्तम यही नरोत्तम है। तो उन्होंने वो तुरंत कृष्ण प्रेम उनको प्रदान किया। वो प्रदान करते ही जिनका श्याम वर्ण था एकदम गौर वर्ण हो गए नरोत्तम, और उनके बाद में तो बिल्कुल विरक्त और सदैव उन गौर लीला में निमग्न, उनके श्रवण कीर्तन में निमग्न रहने लगे। उनके माँ बाप बहुत चिंता में पड़ गए। वो कुछ और सोच रहे थे तब तक वो भाग करके तुम घर को छोड़ दिया और घर छोड़ करके सीधा वृंदावन। लेकिन वो दौड़ रहे थे जा रहे थे उसके बीच में एक घटना घटी। वो थक इतना थक गए और दौड़ रहे थे जब तक गिरे नहीं, एक पेड़ के नीचे वो गिर गए। वो इतना एकदम बेहोश होकर के गिर गए। उन बेहोशी के समय महाप्रभु के दूध का कटोरा लेकर के आए और उनको कहा कि नरोत्तम थोड़ा दूध पी लो, ये दूध पीने से तुम्हारा सारा दूर हो जाएगा। ऐसा कहते गौरांग महाप्रभु चले गए और उनकी थोड़ी सी आंख खुली वापस वो सो गए। तो वापस उन्होंने देखा कि रूप सनातन दोनों आए और आ करके उनको जगा करके उनको दूध पिलाया और बोले वृंदावन जाओ जल्दी। यद्यपि वो लोग भी इस धराधाम पर नहीं रहे थे उस टाइम, इन महान वैष्णव जीव गोस्वामी पाद थे उनके भतीजे के रूप में या उनके शिष्य के रूप में, ये वैष्णव सार्वभौम माने जाते थे। तो उन जीव गोस्वामी पाद उस टाइम वृंदावन में थे और दौड़ करके उनके पास गए। महाप्रभु ने पहले से कहा था उसी समय स्वप्न में कि जाओ तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो लोकनाथ गोस्वामी से तुम दीक्षा प्राप्त करो, अपने गुरु को प्राप्त करके भजन करो। तो यहाँ जीव के स्वामी पाद को मिले और श्री जीव के स्वामी पाद ने उनको लोकनाथ के पास भेजा। लोकनाथ गोस्वामी पाद को कहा किसी बार आप उनको दीक्षा दीजिए। बोले आपको मालूम है कि मेरा तो पुराने में किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। नरोत्तम रोने लगे कि मैं लूंगा तो इससे लूंगा, और गुरु ने कहा मैं कभी दीक्षा किसको दूंगा नहीं। और आप लोग जानते हैं और कितनी सुंदर सेवा उनके द्वारा है? उनके जो जंगल जाने का जगह था, बाथरूम जाने का जगह, उस जगह को रोज सुबह जा करके वो एकदम पवित्र करके झाड़ू मार करके बुहार करके और सुंदर जल का छिड़काव करके स्वच्छ रखने लगे। तो चार दिन के बाद में मालूम पड़ा लोकनाथ गोस्वामी पाद को कि ये कौन कर रहा है। एक दिन वो जारी में छुप करके इनाम करने लगे तो देखा कि तो जाते ही नरोत्तम निकला झाड़ू लेकर के और लगा झाड़ू देने। वहां पर उन्होंने अंदर भी पूछा कौन है, तो नरोत्तम ने कहा आपका दास। और जब एक राजा के पुत्र के द्वारा इस प्रकार नम्रता देखा तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनको दीक्षा दिया। वो एक ही शिष्य उनके हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन रतनदास ठाकुर ये गुरु पूजा में गाते हैं, गुरु वंदना में, यही नरोत्तमदास ठाकुर के जीवन है। न केवल नरोत्तमदास ठाकुर के, लोकनाथ के जीवन समस्त लोगों के जीवन है। मतलब हमारे तो प्राण वल्लभ है। और लोकनाथ के साईपाद ने उनको भेज दिया वापस जीव के साईपाद के पास, क्योंकि वो तो अनन्य उनका साधन भजन में ही मन था और कोई शिष्यों को दीक्षा देकर के प्रचार कार्य कराना ये उनका काम नहीं था। वो भजनानंदी थे तो वो अपने भजन में उन लगे रहे। अर्जु गोस्वामी पाद के पास दे दिया। अर्जु गोस्वामी पाद के पास से खूब शिक्षा लिया। उस टाइम एक दुखी कृष्ण करके आए थे और श्रीवास प्रभु और दुखी कृष्ण का नाम हुआ श्यामानंद, और ये तीनों को ठाकुर कहते हैं, शिवास ठाकुर, श्यामानंद ठाकुर और ये नरसमदास ठाकुर। वो प्रखर विद्वान लोग थे, तीनों तीन इतने विद्वान थे, उद्भव विद्वान जीव गोस्वामी पाद ने देखा कि ये लोग प्रचार के लिए सक्षम है, तो उन्होंने उनको बंगाल में प्रचार के लिए जितना भी शास्त्र था रचित के शास्त्रों को लेकर के भेज दिया, लेकिन बीच में शास्त्र चोरी हो गया। उनके बाद नरसिम्हदास ठाकुर तो खेतुरी चले गए, तो उनका गुरु महाराज का आदेश था, जाओ तुम बंगाल में जाकर तुम प्रचार करो, या जीव गोस्वामी पाद जो करे वो तुम्हारे शिक्षा गुरु है, वो जो कहे उसका आज्ञा का पालन करना। तो नहीं चाहते हुए भी वो वृंदावन छोड़ करके गए और खेतुरी में जाकर के वो कीर्तन करने लगे, भजन। पहले तो वो रोते थे सदैव वृंदावन के लिए, हमें कभे हम बुझी बोस्ती वृंदावन इत्यादि, वो कीर्तन की रचना करके जाते थे और विरह में रोते रहते थे। तो अद्भुत अद्भुत कीर्तन उनके द्वारा बना है। वो अपने गुरु महाराज वृंदावन के विरह में इस सब कीर्तन की रचना वहीं पर किए थे, उनके विरह में। और उनके गुरु महाराज ने आज्ञा दिया था कि तुम उन भगवान के अर्चा विग्रह को पूजन करना, तो वो छह विग्रह का पूजन करते थे, छह अर्चा विग्रह रखते थे, बहुत बड़ा उत्सव किया था। जब उनकी प्रतिष्ठा की गई तो बहुत बड़ा उत्सव किया था, और उत्सव में श्री जानवा मां भी खड़दौ से आई हुई थी, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा जी मां उपस्थित थी। बहुत विस्तार से वहां वर्णन है, लेकिन खास करके उन ऐसा कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन जम करके हुआ कि भगवान चैतन्य देव उन पंच तत्व इत्यादि वहां पर प्रकटित होकर कीर्तन करने लगे। तो उनके बाद में उनका ख्याति इतना बढ़ गया कि ब्राह्मण लोग भी उनसे दीक्षा लेने लगे। प्रत्येक कायस्थ व्यक्ति से ब्राह्मण दीक्षा ब्राह्मणों को द्रोह हुआ। और वो कोई एक राजा के पास, राजा का नाम मैं भूल रहा हूं, वो राजा के पास गए, मतलब एक कायस्थ होकर के ब्राह्मणों को, ये लोग कितना निर्दयता का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दीक्षा देते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या मान रहे हैं। तो राजा ने कुछ अरेंज किया, एक विद्वान पंडित को लेकर के बोलता है ठीक है साथ करेंगे, उनको हरा करके फिर बेइज्जत करेंगे, तब दीक्षा दीक्षा लेना सब लोग बंद करेंगे जब बाहर जाएंगे साथ। तो जब ये बात का पता चला तो नरसिम्हदास ठाकुर के मित्र और उनके एक शिष्य थे और रामचंद्र जी, तो ये दोनों ने, एक ने पान का दुकान चालू किया, जो एक गांव में पहले रुकने वाले थे वो पंडित लोग तो साक्षात करने के लिए आ रहे थे और बाद में खेतुरी आने वाले थे, तो उसी गांव में वो लोग जाकर के एक पान सुपारी का दुकान किया और एक कुंभकार का पेश लेकर के कुछ मटका इत्यादि आमने सामने दोनों बैठे थे। जब वो पंडित लोग निकले तो पंडित पान खाए बगैर मानते नहीं, तो वो पान की दुकान वगैरह गए, तो वो उनसे पहले जो संस्कृत में वार्तालाप करते थे, ये पान की दुकान वाले वार्तालाप करते संस्कृत में, तो लग गए उन पंडित लोग है ना, जहां संस्कृत सुनते लग जाते हैं, उनके साथ 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 में लग गए, वहीं पर रात हो गए। और जब ये सुना राजा ने, ये लोग पंडित है परास सो रहे, भाई आप लोग कौन है, तो किसने परिचय दिया, ये उनके शिष्य है, बोले गुरु पास जाने से क्या हालत होगा, भागो भागो यहां से। और वहीं से वो दोनों भाग गए। बहुत बहुत ब्राह्मणों ने कई बार ईर्ष्या द्वेष से उनको इस प्रकार किया था। उनके विषय में तो एक घटना और सुंदर है, एक किसी भक्त के कल्याण था, उन खलिहान में बहुत बड़ा सर्प रहता था, तो नरसिम्हदास ठाकुर उस खलिहान में गए थे ان کھلیان میں جاتے ہی وہ سرپ بھاگ گیا اور وہاں سے وگرہ پرگٹ ہوئے. ولبھ جی کیا نام ہے ولبھ جی جو وگرہ, وہ وگرہ ان کے کھلیان سے ان کو پراپت ہوا تھا, وہ سوئم وگرہ ہے. تو ان کے وشے میں دوسرا چرچا چلتا ہے کہ ان کے ان انتم کال میں جب تک وہ اتارم پر لیلا کر رہے تھے, ابھی انہوں نے یہ لیلا سمرن کرنا چاہا کیونکہ وہ تو سمپک منجری تھے, انہیں تو لیلا میں جانا تھا. تو جب لیلا سمرن کرنے جا رہے تھے تو اس ٹائم کی گھٹنا ہے کہ ان کو بہت بخار آنے لگا اور برہمن لوگ سب بولنے لگا دیکھو ابھی اتنا بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا, اور واسطو میں وہ پران تیاگ کر دیے اسی بخار کے انترگت وہ پران تیاگ دیے. جب پران تیاگ ہو گیا ان کا تب وہ لگے لوگ کھلی اڑا دیں, اور رام چندر جی رونے لگے, ان کے شیش گن رونے لگے, اتنا رو رہے تھے. بولے دیکھو یہ لوگ کو موقع مل گیا, یہ ہوا وہ ہوا, تو ترنت جاگرت ہو گئے. بولے دیکھو یہ لوگ آپ کا نندا کرتے ہیں اسی لیے, تو وہ خوش ہو گئے. ان کے بعد میں ان کو انہوں نے کیسے شریر کو تیاگا ان کا ورنن ہے, ادبھت طریقے سے اپنے شریر کا تیاگ کیا. اور وہ جو گالی دینے والے لوگ بھائے نندا کرنے والے کہاں چھپ گئے پتا نہیں, بولے تو زندہ ہوا, تو کیسے آج نہیں ہے مر کر کے زندہ ہوا, پھر بھی نندا اتیادی چلتا تھا اور بہت لوگ میں ستی بھی چلتا تھا اور بہت وکھیات بھی ہو گئے تھے. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی اب میں ان شریر کو واسطو میں چھوڑنا چاہتا ہوں, تو ان کے شریر کو لے جائے ان کو لے جایا گیا, اور جب مرت ہو گئے ان شریر کو لے جا کر کے سنان کرا رہے تھے ان پدما ندی میں, تو سنان جیسے جیسے وہ پانی گرتا تھا تو ان کا شریر پروائت ہونے لگا, وہ جل ہونے لگا, اور وہ لوگ شیشے پریم بہور ہو کر کے جل دے رہے تھے. ناستک لوگ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کا شریر گل کے پرواہ ہو رہا ہے, اور تھوڑے ٹائم میں بالکل باڈی میں کچھ بھی اوشیش نہ ہڈی نہ چام نہ کچھ نہیں بچا, سب کچھ گل کر کے بہ گیا. شری نتن داس ٹھاکر کا چریتر ہے. تو ایسے ایسے بھاگوت مہاپربھو نے پردان کیے ہیں, اور شیل پربھوپاد مہاراج نے شریمد بھاگوتم اور بھکت بھاگوت دو بھاگوت دے کر کے ان مہاپربھو کے جن نے ہم کو سکشم کیا ہے اس نتیہ پرتی. اسی پرکار ان بھاگوتم کا سمن کرنا چاہیے اور بھگوت بھکتوں کے پرتی آدر نمسکار کرتے ہوئے ان کی سراہنا کرنی چاہیے. شیگراتی شیگر کرشن پریم سے ہم لوگ اپلوت ہو جائیں گے ہمارا ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشن کرشنا ہرے 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 رام 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 سمد بھاگوتم کی نرتم داس ٹھاکر کی نرتم داس ٹھاکر آئے راؤ دیدی مہا مہوتسو کی ہرائی گورا ہری پرمند ونشاکلپتروشگرباسندوجپتیتنم پاونبھیو وشنبھیو نمو نمہ.